नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उन्होंने भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया और इस खतरे से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि दर 6.5% थी। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसके 201 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका अनंतिम अनुमान 187 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पौड़ी में नेशनल हाईवे 534 के दुकड्डा से कुमखाल के बीच सड़क के नवीनीकरण के लिए 390 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 18.1 किलोमीटर के सेक्शन को 2-लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि इस परियोजना का मकसद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही के रास्ते को बेहतर बनाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में बड़े बदलाव हुए हैं जो वैश्विक व्यवस्था को ही फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक में अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों से इंडो पैसिफिक में उथल पुथल देखी जा रही है। उन्होंने वाइमर प्रारूप की बैठक के लिए भारत को मिले निमंत्रण की सराहना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के उनके समकक्ष शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से भारत यूरोपीय संघ संबंधों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ भारत के संबंधों में आज सबसे ज्यादा विकास की गुंजाइश है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो कारक और घटनाएं इसे और ज्यादा अस्थिर और अनिश्चित बनाती हैं, वे समान विचारधारा वाले, समान सोच वाले और साझा विचारों वाले देशों के बीच गहरे सहयोग के लिए प्रेरित करती हैं। डॉ जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय से बातचीत में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की।
कई दशकों से वहां आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो।
रूस ने अमेरिका से मांग की है कि जब्त किए गए ऑयल शिप पर सवार रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द उनके देश वापस भेजा जाए। अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला से जुड़े रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया है। रूस ने अमरीका से यह भी आग्रह किया कि रूस के नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका के पास वेनेजुएला के लिए 3 चरण की योजना है जो देश की रिकवरी की देखरेख करेगी और अंत में एक बदलाव होगा। शनिवार को अमरीकी सेना द्वारा नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वेनेजुएला को स्थिर करने के लिए ये योजना शुरू होगी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह टूर्नामेंट 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाली 10 टीमें आखिरी 4 जगहों के लिए मुकाबला करेंगी। टूर्नामेंट के मैच काठमांडू में 2 जगहों, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड और अपर मुल्पानी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।